તારીખ 1/5/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 206 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 84
આચાર્ય મહારાજ ઓર પિતાકાર આચાર્ય મહારાજ દોનો કી શૈલી હૈ વિષય કો પ્રતિપાદન કરને કી તત્વ કો પ્રતિપાદન કરને કી શૈલી હૈ ઉસમે ન્યાય લોજિક તો દેતે હી હૈ ક્યોંકો અજ્ઞાની કો સમજાના હૈ કભી કભી ન્યાય ગૌણ હો જાતા હૈ અધ્યાત્મ કે પ્રધાન જાતે હૈ કા અધ્યાત્મ રસ્તા રસ દર્શન કરાને વાલી ગાથા હમ સાથ મે બોલેંગે હમે સુખ ન હો દુઃખ પ્રાપ્ત और किसी को अधूरा सुख चाहिए ऐसा भी सुखी जीव का अभिप्राय है, किसी को उत्तम सुख कहते हैं। जो जीव का स्वभाव है और जीव का पर्यायाश्रित द्रव्याश्रित तो स्वभाव है और पर्यायाश्रित प्रयोजन। द्रव्याश्रित नहीं मुझे प्रजाति ज्ञान योग से दो अर्थघटन है, एक आगमिक और एक आध्यात्मिक। तो द्रव्यान योग के आगम होते हैं, उस आगम में वस्तु के स्वरूप संबंधित, वस्तु के विज्ञान गुणधर्म संबंधित अनेक प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। और ठीक उसी के अनुसार अपने आत्मकल्याण का हित कैसे हो या आत्महित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इस विषय में प्रवेश कराने वाला कोई सीधा सीधा अनुयोग है तो प्रज्ञान योग है। और यह प्रज्ञान योग अध्यात्म में सीधा प्रवेश कराने वाला भी है, उसी को भी प्रज्ञान योग कहने में आता है। तो अध्यात्म प्रज्ञान समय सार में दोनों विषय का बहुत सुंदर संतुलन है और जिसका रचयिता भगवान चिंतकुंड आचार्य देव हो उसके विषय में हम कहने वाले भी हैं। तो इस शास्त्र के में जो कोई अध्यात्म रस भरा है साथ साथ कल्याण योग का अभ्यास भी होता है, सिर्फ पढ़ना ही इसका अभ्यास है ऐसे अभ्यास के मर्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। इसकी हर गाथा में, प्रत्येक गाथा में कार्य पद्धति कैसी है, जो आत्मकल्याण करना है उसका प्रयोग कैसा होता है, ये विषय का भी अपने संदर्भ में है आचार्य ने प्रतिपादन किया। प्रज्ञान योग का कितना महत्व है और खास करके अध्यात्म द्रव्यान योग कैसे होता कैसा होता है, इस विषय पर एक बहुत सुंदर गोपाल देव का उपरांत है जो हम मुंबई में आए थे, जिन्होंने स्वाध्याय किया है लेंगे गोपाल देव को जो दर्शन करते हैं उपरांत है। इस शिविर में आने वाले मुख्य भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर में आजकल तो शास्त्रों की अलमारियां भरी हुई है और दौड़ भरे हुए हैं, तो हो सके तो समयकार भी गोपाल गुरु के रचनामृत, गुरुदेव के रचनामृत, गुरु कृष्ण प्रकाश के गांधी जी के रचनामृत, गुरु ग्रंथ के रचनामृत, जिन महात्मा मुखार प्रकाश और फिर कुछ न कुछ शास्त्र जो है साथ में रखेंगे तो उसका जो कहीं भी आधार लेना होगा तो और सुविधा रहेगी। लिखते हैं कृपाल देव के द्रव्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है। पूरा निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है, इतना गंभीर है कि सारे विश्व के भाव भरे हुए हैं, अनंत भाव भरे हुए हैं। ऐसा एक द्रव्य अपना स्वभाव से अनंत भाव को पी करके बैठा है। ऐसा है द्रव्य स्वभाव कि जो अनंत स्वभाव को और एक एक स्वभाव एक के गुण एक स्वभाव है उसको अनंत भाव को पी करके बैठा है। तो परम गंभीर है, जैसे समुद्र में उतने रत्न होते हैं उतने रत्न होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते हैं, इतना गंभीर है। ऐसे आत्मा स्वक्षेत्र से भले ही स्वदेह प्रमाण हो, क्षेत्र भले ही स्वदेह प्रमाण छोटा दिखता हो, किंतु उसमें अनंत अनंत भाव भरे दिखाई नहीं दे रहा है। इस द्रव्य स्वभाव की गंभीरता है, जैसे व्यक्तिगत गंभीरता होती है दृष्टांत ले लेने पर, तो कोई कितने भी विचक्षण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन उसका दिखावा नहीं होता है। क्यों? उसकी गंभीरता को दिखा। ऐसे आत्मा में अनंत गुण और अनंत गुण के पर्याय गुणवान पर्याय इतनी भरी है कि उसकी गंभीरता इसमें डुबकी लगाने वाले को भी मालूम पड़ती है, दूर रहने वाले को मालूम नहीं पड़ती। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मातु सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। इसकी सूक्ष्मता इसका एक स्वभाव भी है और इस सूक्ष्मता से ही सम्यक्त्व का ग्रहण होता है। सम्यक्त्व स्वयं ही इतना सूक्ष्म है कि अगर ये सूक्ष्म समझ में आ जाए तो पूरा स्वभाव सम्यक्त्व की सूक्ष्मता समझ में आ जाए तो पूरा स्वभाव। पांच से चार नंबर के पत्र में आपको बोलते सर्वज्ञ को सर्वज्ञ के रूप में योग संन्यास है। हमने साक्षात सभव शरण में जाकर के पूजा भक्ति गुणानुवाद स्तुति वंदना आदि किया है, लेकिन प्रकट कारण पाने पर भी एक सम्यक्त्व रूप में भी पहचाना नहीं है तो हमारी जो पूजा भक्ति है वो तो सफल नहीं रही, निष्फल रही है। तो ये जो सूक्ष्मता है, तो सम्यक्त्व की जो सूक्ष्मता है, अगर वो समझ में पहचानने में परखने आ गई तो सतदेव तत्व सतगुरु तत्व और पुरुष ज्ञानी को जो तीनों सजीवन होती है उनकी पहचान होती है और यही पहचान वास्तव में स्वरूप की पहचान का ही प्राप्त होता है। कुछ काल में कुछ लोक में ऐसा कभी नहीं बना बनने वाला कि ऐसे सजीवन मूर्ति की सम्यक्त्व रूप में पहचान हुए बिना किसी को स्वरूप की पहचान हो या आत्मानुभव हो या मोक्ष मार्ग मिले या आत्म कल्याण हो एक अंश में भी ये संभव नहीं। पुकार पुकार के शरीर में यहाँ पर कहते हैं कि सारा निर्ग्रंथ प्रवचन का ही रहस्य है, उसकी सूक्ष्मता है। के सूक्ष्मता से क्या सूक्ष्मता में ला करके बताएं क्या? जिस स्वभाव की सूक्ष्मता के आगे स्वभाव का चिंतन भी स्थूल है, तो वाणी में लाने वाले विकल्प कितने स्थूल हो गए? वाणी कितनी स्थूल है यहाँ तो उसका नाम ले लें। यानी जो वचन अगोचर है, विकल्प अगोचर है, मन अगोचर है, वचनातीत है, विकल्पातीत है, मनातीत है, ऐसी जिसकी सूक्ष्मता है, लेकिन जो ज्ञानातीत नहीं है, जो ज्ञान में आ सकता है, ज्ञान स्वयं सूक्ष्म है, तो उतना सूक्ष्म है तो सूक्ष्म स्वभाव को तो इसलिए ज्ञान की तैयारी करनी पड़े, करनी चाहिए। पर इसी के लिए तो ये शरीर है कि आज तक अनंत काल में हमारा स्वभाव हमें सूक्ष्म होने से समझ में नहीं आया, पहचानने में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, आराधना में नहीं आया। तो उसी के लिए हमें प्रयास करना है सामूहिक रूप से उस शरीर के साथ। इसका महत्व कितना है इस ज्ञान योग का, कि ये शुक्र ध्यान का कारण है, जो शुक्र ध्यान केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा ज्ञान योग का विषय शास्त्र है। अध्यात्म के अनुयोग के रूप में जाता है, अति सुंदर रूप से, बहुत रोचक रूप से प्रतिपादित हुआ है। कि हे भव्य, इतना ही सत्य, सत्य माने परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जितना यह ज्ञान है। हे भव्य, मैंने हे आत्मकल्याण के वांछित, आत्मकल्याण के लिए समय सार को अभ्यास में लेने वाला ही उसी को भव्य कहते हैं, जो सिर्फ आत्मकल्याण के लिए ही समय सार, दूसरा कोई कारण से समय सार है भी नहीं। दूसरा कारण माने विद्वत्ता के लिए ये ग्रंथ नहीं है, विद्वान पंडित बनने के लिए ये ग्रंथ नहीं है, ये परमागम को ज्ञानी बनने के लिए। और 2000 साल से इसकी उपस्थिति है, तो इससे बहुत से ज्ञानी हुए भी हैं। गुरुदेव का सभी तो वर्तमान में ही है। कहते हैं कि उतना ही सत्य, सत्य मैंने परमार्थ स्वरूप आत्मा है, परमार्थ स्वरूप मैंने परम कल्याण का कारणभूत है, परम आश्रय करने लायक है, इसलिए परम प्रयोजन स्वरूप है। प्रयोजन दो तरीके से है, एक तो आश्रय करने के लिए जो प्रयोजन तत्व है वही आत्मा, जो प्राप्त ही है अनादि से, उसको प्राप्त करने नहीं है, वो तो प्राप्त ही है क्योंकि अनादि से वो है ही है, उसका कोई नया जन्म कभी नहीं हुआ। जिसका जन्म होना है और इस प्रयोजनभूत तत्व के आश्रय से होना है, ये परम सुख है, पूर्ण दशा है, पूर्णता है, मुक्त दशा है, निर्वाण तत्व है, परम सुख है, ये भी प्रयोजनभूत है तो प्राप्त करने लायक प्रयोजन है। एक प्रयोजनभूत तत्व प्राप्त है, दूसरा प्रयोजन की प्राप्ति करने बाकी है वो उसी के आश्रय से सुखी है। इसलिए आत्मा को परम प्रयोजन द्रव्य स्वभाव को परम प्रयोजन, परम मैंने इससे आगे कोई नहीं हो किसी को ही परम कहा। गुरुदेव श्री परमात्म प्रकाश के प्रवचनों में कहते हैं जिसका संकलन हुआ है प्रयोजन प्रकाश तीसरे भाग पर सब जाता है प्रवचन। यह परमात्म तत्व परम प्रयोजन भूत है और इसके आगे इसके बराबरी में इसके आगे केवल ज्ञानादि पूर्ण पर्याय भी अपरम भाव है। परम भाव इतना ही परम स्वभाव, यहाँ इस परम स्वभाव को आचार्य महाराज बहुत सुगम शैली से हथेली में दे देते हैं, ले लो ये। ऐसी बात किसी गाथा की टीका में होती है, इसलिए इस गाथा के प्रथम शिविर में होते हथेली में देते हैं। आप ये कोई लौकिक बात है कि हथेली में जो चीज आती है बहुत आसानी से खरीद जाती है, इसका अनुभव किया जाता है। लेकिन आत्मा तो इतना भी दूर नहीं है, हथेली में से मुंह में ले जाओ तो जैसे मुंह में स्वाद आने लगे ऐसे वो स्वाद में आ ही रहा है, इतना नजदीक है, इतना समीप है। तो हथेली जी का दृष्टांत भी इसमें अधूरा लागू पड़ता है, पूरा पूरा लागू पड़ता है। क्या कि यह जो सत्य आत्मा है, परमार्थ स्वरूप आत्मा है, अपना स्वरूप रूप आत्मा है, निज स्वरूप रूप आत्मा है, जितना यह ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, यह ज्ञान मैंने कौन सा ज्ञान, हमारे पास है या नहीं है ये ज्ञान, हमारे पास ज्ञान किसको कहते हैं आचार्य महाराज, हमको कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते। गुरुदेव को जब समय सार से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या महसूस किया था, उन्होंने यह महसूस किया था कि ये समय सार की रचना 2000 साल पहले हुई है किंतु मेरा जन्म होने वाला था, मेरा नया जन्म होने वाला था इसलिए हुई है, ऐसा महसूस किया। इसलिए समय सार का स्वाध्याय करने वाले को ऐसा लगना चाहिए आचार्य महाराज भव्य कह करके मुझे ही संबोधन कर रहे हैं, भव्य कह करके कोई सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, ऐसा लगना। जितना यह ज्ञान है, यह ज्ञान मैंने प्रकट ज्ञान है, कौन सा प्रकट ज्ञान है, तो जो वेदन रूप है वही ज्ञान है। ज्ञान के तो अनेक धर्म है, एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है, धर्म होता है, उसकी शक्ति तो है स्वतः प्रकाशक, सभी को स्वयं का भी प्रकाश करना, स्वयं की मौजूदगी का भी प्रयास प्रकाश करना और दूसरे दूसरे पदार्थों की मौजूदगी को भी प्रकाश में ले आना, यानी ज्ञान। लेकिन अध्यात्म के प्रकरण में अनुभव की प्रधानता है, जानने की जितनी प्रधानता, जितनी अनुभव की प्रधानता, दोनों में वो अंतर है कि जानने में बोधन नहीं है, बोधन में पहचान हम जन को आंख को बाद को आंख को बाद को सबसे भी कहता है लेकिन हम हमारे ज्ञान को अनुभव में दे सकते हैं, स्वयं अनुभूति स्वरूप है और वो अनुभव कहता है उसके ज्ञान को हमारा हमको भोजन कैसा होता है उसको जानने जानने के साथ लेकिन अगर इतना ही आत्मा होता तो हम सबको अनुभव में आ ही जाना, लेकिन अनादि से वो जानने वाला ज्ञान की परिस्थिति कोई ठीक नहीं रही है, ठीक नहीं रही है मानो परलक्षी रही है, परलक्षी ज्ञान में ग्यारह अंक नवपूर्वक जो जानकारी है जानकारी सफल नहीं हुई, हमने अनंत बार की है लेकिन सफल आज तो इसका किसको बताई लेकिन अनुभव ज्ञान में नहीं आए। जो एक मेंढक भी आ सकता है, किसी भी अन्य पंचेंद्रिय प्राणी चिलिंच भी आ सकता है, अनुभव को प्राप्त होकर के जन्म मरण को छेद कर और अनुभव संपन्न हुए वो ज्ञान कैसा कि जो वेदन रूप है ऐसा, यह ज्ञान का मतलब यही है उतना ही सत्य साधना है। हम यहाँ पर इसे तर्क लगा सकता है कि ये वेदन रूप ज्ञान तो जो है वो तो ज्ञान की एक पर्याय है, वो भी अज्ञानी जीव की कैसे मालूम पड़ा, तो ज्ञानी योग से मालूम पड़ा। यदि द्रव्यान योग का विषय है कि आत्मा एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य को पर्याय होती है, उसको ज्ञान गुण होता है, उसकी पर्याय होती है और पर्याय में स्वभाव होता है, विभाव भी प्रकट होता है, उपस्थित होता है, ये सब द्रव्यान योग के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है। अध्यात्म का विषय ऐसे द्रव्यान योग के कुछ आगे हमें ले जाता है, ऐसा एक अध्यात्म ज्ञान भी होता है। तो यहाँ वो बात लागू नहीं करनी है कि ये अज्ञानी जीव के ज्ञान के पर्याय है, इसका हम क्या करें, हम रहे हैं अज्ञानी, हम अज्ञानी हैं, हमें कैसे ये ज्ञान हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा के तेरे ज्ञान में भी ज्ञान वेदन वर्तमान में मौजूद है, किंतु तुझे वो मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका भी एक कारण मौजूद है। इस कारण को समझता हूँ, क्या है कारण? वो पर के साथ एकत्वता निश्चय है, वो कारण है। तुम्हें ये भाषित होता है, पर भाव और परद्रव्य में लगता है कि ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा जो मेरापन है, यही एकत्वता निश्चय है। इससे ज्ञान वेदन होने पर भी मालूम नहीं, लेकिन है तो सही। क्या करें हम? उत्पादक लिखते हैं कि मुमुक्षु को योग्यता पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कि जहां जहां अपनापन हो रहा है वहां अपनापन नहीं होवे, ऐसी जागृति में आकर के अपना अपनापन छोड़ने का प्रसाद करे, प्रयास करे। तो जो चीज हमारी नहीं है, जो भाव हमारे नहीं है, जो हमारे स्वरूप नहीं है, हमारे स्वरूप रूप नहीं है, इसमें हम कैसे अपने को कर रहे हैं? ये हमारा गलत निश्चय है, गलत भाव भाषण है कि जहाँ हम नहीं है वहाँ अपनापन हो रहा है। तो यह जो ज्ञान है, उस ज्ञान वेदन रूप ज्ञान में तो परद्रव्य का प्रतिभास भी नहीं है। जानने रूप ज्ञान में तो परद्रव्य का प्रतिभास है, वेदन रूप ज्ञान में तो परद्रव्य का प्रतिभास नहीं है। इसलिए वहां परद्रव्य में अपने को होने का चांस भी नहीं है, अवकाश भी नहीं है, गुंजाइश भी वहां नहीं हुई कि हम परमे एकत्र, वहां तो अकेला हम ही हम है। ऐसा होने से उसी को ही यहाँ आत्मा कहा है। ज्ञान ने ज्ञान की पर्याय नहीं कहा है, किंतु आत्मा कहा है। ये अध्यात्म का विषय है, द्रवगुण पर्याय का जानकारी वाला ज्ञान को गौण रखना पड़ता है। ज्ञान के पर्याय है ना, ये बात इधर नहीं एक साथ दोनों प्रकार के ज्ञान बरतता है और ज्ञान के साथ संतुलन भी बरतता है। मुख्यता किसकी, गौणता किसकी? क्योंकि सदमस्त जीव को ज्ञान में मुख्य गौण हुए बिना रहता है, तो यहाँ वेदन रूप ज्ञान को आत्मा कहें या वेदन रूप ज्ञान को पर्याय कहें, पर्याय है तो सही, लेकिन उसको गौण रखना है, उसको मुख्य करना। सभी पर्यायों में एक रूप स्वभाव है, क्या है? सभी पर्यायों में एक रूप स्वभाव है, कहाँ है वो? ज्ञान वेदन है, कहाँ है वो? बात समय अनुसार जहाँ स्वरूप की पहचान करने की चर्चा करते हैं आचार्य महाराज, कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञान मात्र है। आत्मा मैंने मैं तो ज्ञान मात्र हूं। तो ये ज्ञान मात्र कैसा है? संवेदन गोचर होता है, वेदन गोचर होता है, स्वयं के रूप में वेदन गोचर होता है, इसलिए संवेदन रूप है। और इससे उसकी प्राप्ति यानी सिद्धि, वो बात पहचान यानी उलखान कराने के लिए कभी यहां से पकड़ना पकड़ में आता है। आप गुरुदेव जी परमागम सार के 733 नंबर के रचना करके पुस्तिका में लिया है, कहते हैं के स्वयं रूप में अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान पर्याय नहीं कहा हुआ, ज्ञान ही आत्मा है। कितने नंबर का पेज है? 18 नंबर का पेज करो भगवान। 17 नंबर। क्या इसमें कार्य पद्धति की विशेषता क्या है? ज्ञान तो प्रगट रूप है, देख लीजिए क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चल रहा है। अब देख के क्या क्या चल रहा है, क्या मालूम पड़ता है? विचार नहीं करना है, क्या मालूम क्या पड़ता है ये प्रश्न करता है। ज्ञान में क्या मालूम पड़ता है? तुम्हें ज्ञान वेदन रूप हूं ऐसा मालूम पड़ता है। मैं जानने वाला हूं, राजा जी उसमें जानने में आता है, वो मैं नहीं हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लेना है। क्या विचार के विकल्प में ऐसा आएगा? लेकिन मैं पना अपनत्व कहां मालूम होता है? अन्य भाव में, अन्य द्रव्य में, क्या ज्ञान वेदन में? ज्ञान वेदन में अपना अस्तित्व है, अपनी मौजूदगी मालूम पड़ती है। आप शायद कह सकते हो कहने को नहीं मालूम पड़ते, हमें तो लगता है कि मैं राग मैंने किया, राग मेरा है, पूजा मुक्ति के अच्छे राग सुनना चाहता।